ओम शांति। तो बाबा ने इस अभी भी मुरली में भी कहा था कि बच्चे त्यूर पुरुषार्थ करो, और इससे पहले 31 दिसंबर को जब बाबा आए थे उसी समय भी बाबा ने कहा था बच्चे त्यूर पुरुषार्थ करना चाहिए। तो त्यूर पुरुषार्थ किन बातों में करें, किस किस प्रकार का त्यूर पुरुषार्थ करें, तो उसमें बाबा ने 31 दिसंबर के मुरली में सुनाया था चार बातों पर तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। एक, सबसे पहले योग। योग तो हम रोज करते हैं, अमृत वेले करते हैं, लेकिन उसके अंदर तीव्रता चाहिए। तो योग के अंदर तीव्रता क्या होनी चाहिए वो स्पष्टीकरण चाहिए। दूसरा, योग के बाद ज्ञान सुनते हम तो रोज मुरली भी सुनते हैं और भूल भी जाते हैं, तो योग मुरली सुनने के बाद उसका उपयोग कैसे करें, तो उसके अंदर क्या तीव्रता ला सकते हैं, और कर तो रहे हैं और उसके अंदर तीव्रता चाहिए तो उसके लिए और क्या करना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा बाबा ने कहा स्वभाव। ज्ञान सुनने के बाद भी हमारा जो 10 साल पहले 2 साल पहले स्वभाव था वो आज भी स्वभाव ऐसा ही है, तो स्वभाव हमारा कैसे परिवर्तन होगा। और चौथा बाबा ने कहा संस्कार। तो संस्कारों के अंदर परिवर्तन चाहिए, तो इन चारों बातों के अंदर तीव्रता चाहिए। स्वभाव भी चेंज हो रहा है लेकिन बहुत धीमे गति से हो रहा है, तो समय को देखते हुए कि बाबा हर मुरली में कहता है कि बच्चे अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अचानक का शब्द हर मुरली में हर टाइम बाबा कह रहा है। और ऐसा भी कहा बाबा ने इसके पहले भी, नहीं बाबा रोज कहता है, अभी भी कहा पता नहीं कब विनाश होगा, तो अचानक कहता है उसको हल्के रूप में नहीं लेना। बाबा ने कहा इस शब्द को सिर्फ, हाँ रोज सुनाता है बाबा, हल्के रूप में नहीं लेना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर आप कहेंगे हमें पता ही नहीं था, नहीं तो हम कुछ कर लेते थे। और तो इसके लिए बाबा ने बार बार कहा बच्चे पुरुष इन चार बातों में तीव्रता चाहिए। चारों हम कर रहे हैं, अपने समझ से कर रहे हो, तो उसके अंदर तीव्रता और क्या कर सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं लेकिन किन बातों पर और किस विधि से, उन सबकी अलग अलग विधि चाहिए। फास्ट जाने के लिए जैसे हमको 1 किलोमीटर जाना है 5 मिनट लगते हैं, तो अभी 2 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो उसी गति, पहले जिस गति से हम चलते थे उसी गति से चलो तो 5 मिनट लगेंगे जरूर। अगर हमको 2 मिनट के अंदर पहुंचना है तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे बढ़ाएंगे आप तीव्र गति में, क्या करेंगे। पाव तो वही है, तो कितना फास्ट जा सकते हो, क्या कर सकते, आपकी कैपेसिटी है। आप चाहते भी मैं 2 मिनट के अंदर पहुंच जाओ, सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन उसके लिए हमें इतनी योग्यता भी चाहिए ना, पाव के अंदर ताकत चाहिए जो हम फास्ट जा सके दौड़ सके, बिना ताकत के भी जाने सकते हो आप, चाहते हुए भी हम अपने अंदर तीव्रता नहीं ला सकते हैं। तो तीव्रता किस कैसे आएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इन चारों बातों के अंदर तीव्रता चाहिए। तो हमने देखा एक योग के अंदर कि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हम नाम के लिए अभी भी आप देख लो, योग में बैठते हो आप, जब भी बाबा ने कहा 12 दफा करो, बाबा को याद करो, फरिश्ते रूप में याद करो, निराकार रूप में याद करो, तो मन जब चाहे तब एकाग्र होता नहीं है। अगर एकाग्र करने भी जाओ आप, उसके अंदर दूसरे विचार भी आते हैं। हमारा अब तक मन के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है। हाँ मन भी अभी भी आप देख लो, यहां बैठे हो, आंखें खुली भी है, देख भी रहे हो, मुझे लगता है हमको सुन रहे हो आप, देख भी रहे हो, सुनते देखते हुए भी आपके अंदर और एक विचार आता है, अरे आप ये काम करना था। तो ये कौन कहता है? आंखें खुली है, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो भी दूसरे विचार आते हो, कहां से आ रहे हैं? तो हमारे पास दो शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। मन श्रवण कर रहा है तो समझ, सुनने के बाद भी कहते हैं समझ में आया, पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझ जो है वो बुद्धि के अंदर है। तब कहते हैं सुनते समय ध्यान देके सुनो, गिव अटेंशन कहते हैं। तो ध्यान क्या है? मन तो सुन रहा है तो बुद्धि भी वहां लगनी चाहिए, नहीं तो सुनते हुए पढ़ते हुए भी बुद्धि भटकती है, बुद्धि और जगह जाती है। तो पढ़ते समय सुनते समय बुद्धि भी वहां लगनी चाहिए। तो कैसे लगाएंगे आप? तो अपने आप बुद्धि तो लगती नहीं है, बुद्धि के अंदर बहुत सारी जो जरूरत काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारे मेमोरीज है, चिंताएं है, तो बुद्धि बार बार इधर उधर भटकती है, तो स्थिर नहीं होती। इसलिए बुद्धि को कहते हैं पारस जैसी है, स्थिर नहीं हो सकती है। तो उसको स्थिर कैसे करें? और वो योग के विधि से ही, हमारा योग ही मन और बुद्धि को एक करो और एक के साथ जोड़ो। इसको शास्त्रों में भी कहते हैं, गीता में भी कहते हैं कि ज्ञानी कौन? जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिया उसको ज्ञानी नहीं कहा। योगी कौन है? जो सारा दिन ध्यान में बैठता है, योग करता है, उसको भी योगी नहीं कहा है। ज्ञानी योगी वो है जिसके कर्मों में कुशलता हो। आप कोई भी काम करो उस कर्मों के अंदर नीट क्लीननेस हो, स्वच्छता हो। अगर हमने काम किया अगर वो ठीक नहीं है, उस कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट नहीं है और सामने वालों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। और हमारा जीवन का लक्ष्य है स्वयं भी जियो और औरों को भी जीने दीजिए, स्वयं भी शांति से सो जाओ, दूसरों को शांति से सोने दे दो। नहीं तो हमारे चलन, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव, संस्कार, हम अकेले नहीं ना, सन्यासी तो नहीं है। तो सभी के साथ सेवा करो, कहीं भी परिवार में रहो आप तो सबके साथ है। तो सबके साथ रहते हुए हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे बोल, हमारे कर्म, स्वयं भी उस कर्मों से, स्वभाव से संतुष्ट हो, तो आपको लगता है हमने जो किया बहुत अच्छा है, शांति है, अच्छी तरह से जाके सो सकते हो आप। और सामने वालों को भी निश्चिंत कर देते हो। अगर हमारे कर्मों से, बोल से दूसरों के मन में अगर कोई विचार चलता है, ये क्यों, ऐसा क्यों बोला, तो उनका योग लगेगा? वो शांति से सो सकेंगे? तो कौन देगा सुख शांति? कौन देगा? हमें देना है। तब बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने योग, ज्ञान, ये चार विषय के अंदर तीव्रता चाहिए, अर्थात विधि पूर्वक करो। तो वो विधि पूर्वक अगर करने से स्वयं भी संतुष्ट, भले पांच ही मिनट करो, एक एक घंटा बैठ के, अगर आप इधर आके बैठ जाओ योग करना चाहिए करके और आपको नींद आ रही है, तो आपके बाजू वाला क्या करेगा? आपके वाइब्रेशंस कैसे फैलेंगे? आपका भी योग नहीं लग रहा है, दूसरों का भी योग करने नहीं दे रहे हो आप, है ना? तो स्वयं को भी देख लो। इसलिए हर चीज की विधि है। आपके अंदर उमंग उत्साह है, लेकिन उसको भी मर्यादा पूर्वक, नियम अनुसार। आप जल्दी आके बैठेंगे आपको नींद आ जाएंगी जरूर, शरीर को नींद चाहिए। तो आपकी जो चलन है तो उससे औरों को तकलीफ हो रही है। अभी भी देख लो आप, सिंपल साधारण बात हम भी देखते हैं, क्लास में जब आते हो अगर आप सामने सामने बैठे हैं, तो अभी लेट कोई एक व्यक्ति आता है और आगे बैठता है, वो कितने लोगों को डिस्टर्ब करता है? जितने जब भी सामने आएगा सबकी नजर उसके तरफ जाती है ना? तो वो सुन नहीं सकता। आप लेट आए तो नियम है, लेट आने के बाद पीछे बैठना चाहिए। अगर आप बीच में घुसते हो, दूसरों को भी हिलाते हो, स्वयं भी लेट आए और दूसरों को भी डिस्टर्ब किया, कितने लोगों की नजर जाती है? तो वो हम सोचते नहीं है। तो हमें ये सोचना है हमारे कारण औरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, औरों के मन में संकल्प नहीं चलना चाहिए, हमारे बोल से कर्मों से, तब कहते हैं स्वयं भी संतुष्ट और सामने वाला भी संतुष्ट। तो ये नियम मर्यादा हमारे जीवन में एक संतुलन, उसको कहते हैं दैवी मैनर्स। ये कहां कैसे आएगा? कहीं भी जाओ, सब जगह पर खाने पर सब जगह भीड़ होती है, इतने भाई बहने हैं, तो हर एक अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है तो आगे पीछे जाएंगे, किसी को धक्का लगेंगे। अब कितने लोगों के मन में विचार चलते हैं, तो ये दैवी चलन तो नहीं है ना हमारी। कोई कहेंगे हम ईश्वर के बच्चे हैं, शिव बाबा के इनको ईश्वर पढ़ाता है, शिव भगवान आके पढ़ाता है, कोई मानेगा? तो यहां सिर्फ भावना नहीं है, समझ है। जब तक हमारे अंदर यह साधारण समझ नहीं आया, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे बोल अभी भी परिवर्तन नहीं हो रहे, तो कौन मानेगा हमको ज्ञानी तो आत्मा है? ज्ञान माना समझ है। तो इन बातों के अंदर तीव्रता चाहिए, और वो व्यक्तिगत भी चाहिए, परिवार में भी चाहिए। घर में आपके बच्चे हैं, आपके हैं, परिवार है, हम गृहस्थ आश्रम है, ये सन्यासी नहीं है। संगठन में सेवा करते हो, सेंटर में भी बैठते हो, आते हो, कहीं भी पब्लिक फंक्शन में जाओ, ये नियम अगर नहीं तो कोई हमें मानता नहीं है। आप किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, आप तो संदेश क्या देंगे? तो इसके लिए बाबा चाहते इन चार बातों में पुरुषार्थ चाहिए, तीव्रता चाहिए, और कर रहे हैं पहले से भी। एक योग, भले आप 5 मिनट ही करो तो विधि पूर्वक योग में बैठना चाहिए। तो विधि पूर्वक क्या है? सबसे पहले विधि है, सारी दुनिया हमसे भी बहुत 100 गुना योग करती है, तपस्या करती है, विधि उपवास रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भी भगवान नहीं मिलता है। तो भगवान किसका? बाबा ने आकर के विधि बताया हमको, बच्चे आत्मा समझ के बैठना, सबसे पहले विधि है कि आत्मा का आवाज ही परमात्मा के पास जाता है। अगर शरीर का भान है तो कितनी भी आप पूजा तपस्या कर रहे हो, तो शरीर भान में जो संकल्प चलते हैं वो हल्के नहीं होते, भारी होते हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं, तो यहां इधर उधर जाएंगे। तो सबसे पहले है, अगर योग लगान भगवान को याद करता है तो कौन कर रहा है? आत्म। तब बाबा कहता आत्म अभिमानी होके बैठना चाहिए। और बाबा ने बताया बच्चे आंखें बंद करके नहीं, वो भक्ति वाला योग हो गया। आंखें बंद जब खटिया पर सोते हो तब आंखें बंद करते हैं, यहां आंखें खोल के। और बाबा ने सामने किसी को बिठाता है योग करने के लिए भी, उनको देखते हुए भी उनके विचार नहीं चलते हैं। तो ये आदत डालनी है रास्ते पर हम जब चलते हैं, नहीं तो घर में आंखें बंद करके योग किया, रास्ते पर चलते हो किसी को देखते ही गलत विचार आया तो क्या फायदा? तो इसलिए आंखें खोल के करो, कहा कि यहां जब आप सामने कोई बैठा है तो उनको देखते हुए भी आप उनके चिंतन नहीं करते हो, तो आप बाबा से योग लगा रहे हो। पता है हमको शिव बाबा कहां है, परमधाम कहां है, सूक्ष्मतन कहां है, तो रास्ते पर चलते हुए भी ये आदत डालने पड़ते, नहीं तो किसी को देखते ही मन में विचार आता है, अरे ये व्यक्ति है, इसने देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया। हाँ किया था, लेकिन 2 साल पहले किया ना, आज तो नहीं किया। तो आज हमारा मन मैला हो जाता है, तो मन को स्वच्छ रखने के लिए भी किसी को देखते हुए भी हमारे मन में उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो जब हम योग में बैठते, हमारे पास 2 शक्तियां, मन और बुद्धि, इन दोनों को स्वयं को चलाना है। अगर नहीं चल रहे, से बाबा ने कल का राजा हो, है ना, अपना दरबार लगाओ, मन मेरा क्या सोचता है अभी देख करके देख लो।
प्रभु का ध्यान कीजिए, अप को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
तो जब भी योग में बैठते हो तो हमारे पास दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। जैसे यहां से वहां तक जाना है तो एक पाव से चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो दो पाव चाहिए, है ना। तो ऐसे ही मन बुद्धि दोनों को हमें परम धाम तक एकाग्र करना चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म तन तक बाप दादा है वहां तक एकाग्र करने के लिए तो मन बुद्धि को दोनों को लेके चलना है। नहीं तो जब भी हम योग में बैठते हैं मन एक विचार करता है तो बुद्धि के अंदर दूसरी बातें याद आती है, उसको हम कहते हैं माया आ गई। माया और कहां से तो नहीं आती है, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि के अंदर है, स्मृति तो है, आधा कल्प के संस्कार अंदर है, तो खाली रहेगा तो वो जागृत हो जाएंगे, और जब शांत वातावरण हो जाता है तो अपने आप पुराने संस्कार जागृत हो जाता है। तो वो कहां से आ रहे हैं, बुद्धि से जागृत होते हैं। तो इसलिए योग में अगर ये दोनों रास्ते अगर आप विधि पूर्वक उपयोग करते हो तो दूसरे उसके अंदर जागृत नहीं होंगे, तो दोनों को यूज करना चाहिए। नहीं तो हम मन चलता है बुद्धि खाली है, तो एक सेकंड के बाद एक मिनट के बाद देखो कोई ना कोई 10 साल की पुरानी बात आपको याद आ जाएंगी, योग में बैठते ही याद आ जाएंगी। तो इसलिए उस समय जागृत नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को उपयोग करना चाहिए, और सिर्फ 5 मिनट पहले चाहिए। एक बार आपकी गाड़ी चल गई तो अपने आप चलते रहेंगे। तो पहले मन और बुद्धि को आप रास्ता दिखाओ, क्योंकि मन बुद्धि पर सारा दिन का प्रभाव है, तो शांत होकर बैठते ही उसके अंदर इधर उधर के विचार आते हैं। तो योग में बैठते पहले अपने आप से आप बात करो, तो मन बुद्धि से बात करता, अर्थात इन दोनों शक्तियों को चलाना पड़ता है एक रास्ते पर। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, नहीं तो बुद्धि के ऊपर और कोई प्रभाव है तो जवाब नहीं आएगा, दूसरी बात आएंगी। अगर बुद्धि आपकी खाली है, योग के लिए बैठे हो, स्वच्छ है, मन पूछता है तुरंत बुद्धि जवाब देती है, आपके पास जवाब है। दूसरा पूछो, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है, तुरंत आपका रूप आएगा सामने। तीसरा पूछो कि मेरे 7 गुण है, तो 7ों गुणों को रोज जागृत करना पड़ता है, आपके पास है वो, लेकिन जागृत नहीं होते हैं तो कर्मों में आते नहीं है। तो रोज उनको जागृत करना, अपने आप से सवेरे सवेरे पूछो मेरे गुण कौन से है, आत्मा के 7 गुण है, एक के बाद एक एक गुण पूछो और विधि पूर्वक। चौथा पूछो, अगर मेरे 7 गुण है मैं इस शरीर में बैठ के क्या कर रहा हूं, शरीर अलग मैं अलग, शरीर का मैं उपयोग करता, अगर मुझे कहीं देखना है तो आंखों को घुमाता हूं, पहले मन में विचार आता है तब आंखें घुमाते हो, नहीं तो आंखें स्थिर है, ये स्थूल है। तो बुद्धि आत्मा शरीर को चलाती है, मैं अलग शरीर अलग, यह स्पष्ट पता होना चाहिए। नहीं तो हम कभी कभी कहते मेरी आत्मा, मैं आत्मा नहीं, मेरी आत्मा सही कौन सा है, मैं आत्मा मेरी नहीं, आत्मा कहती मेरा शरीर। तो अभी भी बुद्धि के अंदर स्पष्ट जाना, मैं आत्मा अलग, यह शरीर अलग, और मैं आत्मा शरीर को चलाता हूं, चलना है तो पाव यूज करता हूं, देखना है तो आंख यूज करता हूं, बोलना है तो मुंह यूज करता हूं। तब बाबा ने कल कहा था कि बाबा ने भी कैसे अभ्यास किया, कर्म करते हुए ये हमें चाहिए, हाथ अलग है। जैसे कोई पूछेंगे आपको खाना खाया, आप कहेंगे हां खाना खाया, नहीं, आत्मा ने शरीर को खाना खिलाया। तो ये आत्मिक स्मृति हमारे हर कर्म में जागृत रहना चाहिए। आत्मा सवेरे ज्ञान योग का, आत्मा का खाना ज्ञान योग का है। खाना खाया पूछा तो आपको याद है कि शरीर को खिलाते हैं हम, मैं अलग हूं, तुरंत आप जवाब देंगे हां मैंने शरीर को खाना खिलाया है। अगर मैंने खाया कहेंगे मींस आपके अंदर आत्मिक स्मृति जागृत नहीं है, अपने को शरीर समझ के चल रहे हो। तो आत्मिक स्मृति कर्मों में आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, आचरण में आना चाहिए, तब कहेंगे निरंतर जो बाबा चाहता है, क्योंकि कल आत्मा को जाना है। तो हर कर्म करते हुए यह स्मृति जागृत रहे, तो कम से कम अमृत वेले हम अपने को जागृत करें पहले, कि मैं कौन, नहीं तो सीधा बाबा से रूरियान करने लगते हैं, तो शरीर के भान में शरीर की बातें आती है, फरियादी निकलती है, याद नहीं होती है। तो आत्मिक स्मृति है तो आत्मा के अंदर जो जो है वही बातें आएंगी आत्मा के लेवल में। तो इसलिए ये पांच प्रश्न पहले सॉल्व करना चाहते हो। मन बुद्धि आपके अधीन है, आपके अनुसार चल रही है। एक मैं कौन, दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे कर्म, चौथा मेरे कर्म, पांचवा मैं कहां से आया, है ना। विधि पूर्वक अपने आप को पूछते जाते कि मन बुद्धि चल रही है तो दूसरी बातें जागृत नहीं होंगी। नहीं तो अगर बुद्धि खाली आप जवाब दे रहे हो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अरे दूसरा कुछ विचार आ जाएगा। कहां से आता है? बुद्धि खाली है। तो ये दोनों अगर चलते, अगर परमधाम सूक्ष्म तन में परमधाम में जितना सेकंड मन बुद्धि स्थिर हो जाती, वहां बाबा के एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। बाप कौन और मैं कौन? हम जब परमधाम में थे तो कैसे थे? तो एक एक शक्ति को लेकर अपने आप से कंपेयर करो और उसका अनुभव करते हो तो ये स्थिति पूरी एकाग्रता, इस आधा घंटे के अंदर या 15 मिनट तक आपके अंदर इधर उधर के कोई भी विचार आने का मार्जिन ही नहीं है। क्योंकि ये मुंह दो काम कर सकता है, बोल भी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन एक साथ दोनों काम नहीं होंगे। अगर बोलना बंद करो करके फिर खाना पड़ेगा, और खाते खाते बोलेंगे तो नहीं होगा। तो दो काम ठीक नहीं होते, एक साथ नहीं होते हैं। तो इसको लेते हुए अगर ये मन बुद्धि आप अपनी विधि से चलाते हो ज्ञान के अनुसार, तो दूसरे विचार उसके अंदर जागृत नहीं होते हैं। अगर ये नहीं करते हो आप, मन के अंदर मन अकेला चलता है, जरूर इधर उधर के विचार आएंगे ही। तब आप कहते हो योग नहीं लग रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, और अनुभव करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को अनुभव होता है। तो ये दोनों शक्तियों को लेकर अगर आप 5-10 मिनट भी बैठो, देखना आप कभी भी नींद नहीं आएंगी, न दूसरे विचार नहीं आएंगे। नहीं तो योग में बैठे, मुरली क्लास में बैठते हो तो कोई आया गया, हमको क्या मतलब है, हम किसके लिए बैठे हैं? तो माना हमारी बुद्धि अभी भी स्थिर नहीं है, कोई आता है उधर देखते हो, इधर देखते हो, तो समय वेस्ट। आने वाले आएंगे, जाने वाले सब जाएंगे, सब होगा, है ना। अकेले नहीं बैठे हम, तो भी हमें इस संगठन में बैठते हुए अपने आप को एकाग्र करना, अकेले में महसूस करना है, तो वो उसको बाबा कहते हैं एकांतवासी हूं मैं। तो कब होगा? मन बुद्धि को अगर काम देंगे आप, विधि पूर्वक अभ्यास चलता है, एक। दूसरा है मुरली हम रोज सुनते हैं। अगर इस प्रकार आप योग करते हो तो देखना दिन प्रतिदिन हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे पास दवाई है, जेब में रख दो आप तो बीमारी ठीक हो जाएंगी। दवाई समय अनुसार विधि पूर्वक लगानी पड़ती है तब ठीक होता है। तो ये योग आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार है उसको मिटाने के लिए, तब बाबा ने कहा योग बल से संस्कारों को आप मिटा सकते हो। और आत्मा के जो स्वभाव का, आत्मा के भाव जागृत होता है, क्योंकि आप जागृत करते हो कि मेरे गुण कौन से है, मैं कौन। ये रोज करने से अपने आप आपके हमारे जो आत्मा के गुण अपने आप जागृत होंगे, अपने आप कर्मों में आएंगे। तो ये रोज चाहिए। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, देख लो अभी भी आप पूछ लो अपने आप से सवेरे मुरली क्या सुनी थी, एक भी पॉइंट विधि पूर्वक याद नहीं रहता है। तो ज्ञान इसलिए दिया है कि नहीं तो हम पुराने स्वभाव संस्कार के अनुसार अभी भी चलते हैं। ज्ञान सुनने के बाद भी सवेरे मुरली सुनी थी, वहां का वहां फिनिश। तो ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि अभी कर्मों के अंदर ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, तो अब तब हमारे कर्म परिवर्तन हो जाएंगे। जो पहले करते थे हम उस प्रकार नहीं करेंगे, समझ से अभी कर्म करेंगे, तो ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। तो ज्ञान का उपयोग कब होगा? याद होगा तो करेंगे ना। अगर याद ही नहीं तो ज्ञान का उपयोग कैसे? तो ज्ञान को याद रखने की भी तरीका है, ऐसे पढ़ने से हमको भी याद नहीं रहता है। एक सिंपल तरीका है, वो भी आप भी जानते हो, नेगेटिव रूप में आप करते हो। देखो अगर आपको सवेरे किसी ने थोड़ा सा गलत शब्द बोल दिया, कितना साल तक याद रहेगा? क्यों? उसको आप अविनाशी बनाते हो। कैसे? अगर आप किसी ने कुछ बोल दिया, आप जाके बाबा के कमरे में बैठेंगे तो बाबा से योग लगेगा वहां, क्या करेंगे? बाबा देखो आपके बहन जी ने, आपके बच्चे ने कैसे बोला, ऐसे बोला, बाबा को भी सुनाएंगे। चलो एक किया आपने, आप अकेले खाना खाने बैठे हो, वहां भी क्या करेंगे आप? अपने आप से वही बातें करेंगे, अरे आज इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा है वैसा, अपने आप से भी रिपीटेशन होता रहेगा। तीसरा, अगर आपको सारा दिन में कोई भी मिला, उनके साथ क्या बात करेंगे आप? वही बात उनको भी सुनाएंगे। तो एक बात आपने तीन चार लोगों को सुनाया, अर्थात नेगेटिव बात को हम अविनाशी नेचुरल बनाते हैं, उसका संस्कार हम अंदर है, आदत है। अभी वही काम करना है लेकिन पॉजिटिव के लिए करना है, तो उसके लिए भी चार बातें हैं। मुरली सुनी, सुनने के बाद सुनी हुई बात याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धि आज इतनी स्वच्छ नहीं है। सुनने के बाद एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है, और आपको पता हमारी ये कमजोरी है, इसको ठीक करना है, आज ही करना है, तो उसको नोट करना चाहिए। एक पॉइंट नोट करके रखो, रोज बाबा मुरली देता है, रोज मुरली से एक पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लग रहा है, और आपको हरेक को अपनी कमी पता है, तो उसको नोट करो। और नोट करने के बाद यहां से बाहर जाते हो आप नाश्ते तक, बार बार उसको पढ़ो, याद करो आज मुझे क्या करना है, बाबा ने मुझे क्या काम दिया, अपने आप को पढ़ाओ, आज बाबा ने मुझे ये काम दिया, ये करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, इस स्वभाव को मैं कैसे चेंज करूं, इसके लिए मैं क्या करूं, उसका प्लानिंग करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मनन चिंतन, है ना। बाबा ने आज का बाप के जो खजाने हैं कैसे यूज करना चाहिए, ऑनेस्ट किसको कहते हैं, तो बाबा ने सुना, तो आपको चिंतन करना है कैसे हम बाबा के कौन से खजाने हैं, कैसे हम उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, कैसे करना चाहिए। अगर एक चिंतन करते रहो आप, उसके बाद सामने कोई मिल जाता आपको, तो संसार की इधर उधर की बातें न करते हुए वो मुरली के पॉइंट उनको सुनाओ आप, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर एक व्यक्ति को भी सुनाओ, ये चार काम अगर आप करते हो, आज सुनी हुई मुरली आपको 10 साल तक याद रहेंगी, कुछ नहीं करना। और ये चारों काम 1 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं आप। तो एक बार बुद्धि का बार बार कहना, एक आपने लिखा सुना पहले, सुनने के बाद आपने लिखा, लिखने के बाद उसके ऊपर चिंतन किया आपने, यहां से आपको टाइम है, यहां से नाश्ते तक जाते हो, बाहर तक जाते हो, तो वहां तक सोचो, अपने आप से बात करो, बाकी सोचना नहीं तो मुरली खत्म होते ही विचार चलता रहे, अभी इधर ये काम करना है, वो काम करना है। हाँ वो भी करना जरूर है, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन वो बाहर जाने के बाद, तो गेट तक आप सोचो आज बाबा ने ये काम दिया, ये कैसे करना चाहिए, उसका प्लानिंग चलना चाहिए, उसको कहते हैं चिंतन। अगर वो करने के बाद भी इसको अगर परमानेंट करना है, मुख से वर्णन जरूर करना चाहिए। आज के मुरली के पॉइंट हमारे मुख से अगर 1-2 जितने लोगों को आप सुनाते हो, उतना वो ज्ञान का पॉइंट परमानेंट अविनाशी बन जाता है। तो ये जरूर लक्ष्य है, अगर मुरली हमारे आचरण में आना चाहिए तो एक ही पॉइंट आप ध्यान रखो। और जरूर सारे दिन में अगर नहीं कोई मिलता नहीं है, तो आजकल कितने किसी न किसी को फोन आता है, सबके पास मोबाइल है, किसी ने फोन किया, आप अच्छी तरह से बात करो उनसे, लास्ट में आज के मुरली के पॉइंट उनको सुनाना। लेकिन आपको याद नहीं है तो कैसे सुनाएंगे आप? तो हम क्या करता था, एक कागज पर लिख के जेब में डाल देता था, अगर किसी का फोन है, बात किया, उस समय याद नहीं, तुरंत जेब से निकालो, नजदीक है, डायरी ढूंढने जाओ तो 2 मिनट लगेगा, तो अगर तुरंत निकाल के उसको पढ़ के सुनाओ, अगर 1 हफ्ता आप आदत डालेंगे, उसके बाद देखना अपने आप बुद्धि ज्ञान की पॉइंट धारण करती है, आदत डालनी पड़ती है ना। ऐसे देख लो, तो ऐसे देखो, किसी ने हमको 10 साल कही बात किसी को देखते याद आती है, उनको देखते पुराने नेगेटिव बात जरूर याद आती है, लेकिन मुरली के पॉइंट याद नहीं आती है, क्यों? हमने आदत डाली नहीं है। अगर आप 1 हफ्ता काम करो, ये आदत डाल दो, रोज लिख के रखो, 1 हफ्ते के बाद नहीं चाहिए, अपने आप किसी को देखते ही आपके मन में क्या जागृत होगा, अरे इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, क्योंकि आपने आदत डाली है। मनुष्य का नेचर है, ह्यूमन नेचर है, आदत डालनी पड़ती है, नहीं तो बहुत समय से जो आदत चली वही चल रही है। और 1 हफ्ता करो आप, उसके बाद देखना अपने आप आपको सारी मुरली के पॉइंट याद रहेगा। नहीं तो ज्ञान सुनने के बाद उसको आचरण में नहीं लाया तो हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन अपने आप नहीं होंगे। नहीं तो कहा ज्ञान जितना पवित्र जल नहीं है, इसलिए गंगा जल कहा उसको, ज्ञान जितना पवित्र अग्नि नहीं है जो पाप को भस्म कर देती है। लेकिन वो ज्ञान याद रहेगा तो ना, तो ये विधि चाहिए। मुरली एक ही पॉइंट आपको 10 पॉइंट नहीं सुना लिख सकते हो, छोड़ दो। और एक पॉइंट आपके साथ जेब में होना चाहिए, जब चाहे किसी को देखते ही तुरंत वो याद होना चाहिए, आज इनको सुनाना चाहिए। अगर सुनाते हो देखना आपके अंदर परमानेंट याद है, ये तीव्रता चाहिए। ज्ञान का मेमोरी के अंदर, स्मृति के अंदर रहना चाहिए तो ज्ञान याद नहीं रहता है, तो आचरण में नहीं आता है। तीसरी बात है तो ज्ञान के बाद तो बाबा ने कहा स्वभाव और संस्कार। अगर ये दो काम अगर हमारे अंदर पक्के होते हैं तो अपने आप देखना हमारे स्वभाव के अंदर नम्रता आती है, निर्माणता आती है। सामने वाला कितना जोश से बोल रहा है, आपके अंदर जोश जागृत नहीं होगा। क्यों? अंदर ज्ञान है, योग की शक्ति है, अपने आप पुराने संस्कार को जागृत नहीं करेगा। कितना भी संस्कार हो उसको जागृत नहीं करने देगा। ये दोनों शक्तियां उसको कंट्रोल करती है। अगर ये दोनों शक्ति नहीं है, सामने वाला आपसे जोर से गुस्से से बोलता है और आपको उस समय याद भी है कि मुझे बोलना नहीं है, चुप रहना है, लेकिन अंदर का पुराने संस्कार का जो प्रेशर है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं योग बल। अगर विधि पूर्वक कितना भी पुराने संस्कार हो, अगर योग बल है वो संस्कार वहां कंट्रोल में आते हैं। सामने वाला बोल करके आपके संस्कार को जागृत करता है। आप पहले बहुत शांति से बात करते हो, अच्छी तरह से, आपके अंदर जोश नहीं है, लेकिन सामने वाला ऐसे शब्द बोलता है तो पुराने संस्कार जो आदत है वो एकदम उछलती है, क्योंकि उसके पास पावर है। उसको हम कहते हैं माया का बल, न चाहते हुए हो जाता है, न जाते हुए मुख से शब्द निकल जाता है। क्यों? कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल कौन करेगा, कहां से आएगा वो? तो वो योग और ज्ञान। ज्ञान का पॉइंट अगर आपको याद है, बुद्धि में है, और योग की शक्ति है, तो वो चाहते हुए भी बाहर नहीं आएगा। तब हमारे स्वभाव संस्कार, आप ही देखना दिन प्रतिदिन अपने आप सरल स्वभाव, उसको कहते हैं लेट गो। ठीक है, वो बोलता है बोलने दो, मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मेरे विकर्म बन जाते हैं। हम बाबा के पास क्यों आए? कुछ हिसाब किताब बनाने के लिए आए कि कुछ मिटाने के लिए आए? बनाने के लिए तो नहीं आए ना। हाँ, बनाना है, अच्छे हिसाब किताब बनाना है, नेगेटिव को मिटाने आए हैं। तो इसके लिए ये दो गोली तो खानी पड़ेंगे ना। बीमारी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बीमारी मिटानी है ना। तो कब मिटेंगे वो? डॉक्टर के पास जाने से तो नहीं जाएंगे ना। तो वो जो दवाई देते हैं, जिस विधि से ले लो कहा, उस विधि का प्रयोग करेंगे, विधि पूर्वक दवाई लेंगे तब मिटेगा ना, नहीं तो नहीं मिटेगा। नहीं, हम डॉक्टर के पास गए थे, दवाई लेके रखी है, तो रखने से तो ठीक नहीं होगा। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे स्वभाव संस्कार के अंदर अभी भी नरमी नहीं, सरल स्वभाव नहीं है। ठीक है, सामने वाला कैसा भी हो, हरेक का अपना अपना लक्ष्य है, तो वो अपने लक्ष्य के अनुसार उनके बोल, उनके चाल, उनके कर्म होंगे। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? अगर वो लक्ष्य हमारा सदा जागृत है तो हमारे वाणी के अंदर अपने आप मधुरता आती है। और इस विधि पूर्वक चलने से देखना आप अपने संस्कार भी, कितने कड़े संस्कार हो, संस्कार के ऊपर लगाम रहता है, नहीं मुझे नहीं बोलना है, मुझे ऐसे कर्म नहीं करना है। क्यों? लगाम लगने वाला कौन? ये मन और बुद्धि। ये अगर शक्तिशाली है तो अपने आप अपने स्वभाव संस्कार, तब बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार के अंदर अपने आप परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये चार सब्जेक्ट के अंदर तीव्रता चाहिए। अगर इन दो पहले दो सब्जेक्ट के अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम विधि पूर्वक नहीं, मुरली हर एक सुनता है, इंटरेस्ट भी है, तो देखा सुनना ही कहते हैं श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। खाने से मोटा नहीं बनता है, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। सुनने से कुछ भी नहीं होगा, सुनने के बाद, अभी आपने सुन लिया, अभी आप सुनने से भी कुछ होगा नहीं। यहां से जब जाते हो आप, हम इधर उधर की बात करते हैं। नहीं, हम आए क्यों? कि हमारे जीवन के अंदर कुछ प्राप्ति करने आए, कुछ परिवर्तन चाहते हो। तो यहां से बाहर जाते समय आप अपने आप से बात करो, तो अभी मुझे क्या करना है, क्या सुनाया था? अगर एक बार उसको रिवाइज नहीं करते हो, वो परमानेंट नहीं बनता है। न तो यहां सुना, बाहर जाते दूसरी बात करेंगे आप, वो सुना हुआ यहां का वहां चला गया, उसके ऊपर दूसरा फाइल आ जाता है। तब कहते हैं श्रवण के बाद मनन चिंतन करना चाहिए। तो एक अभ्यास याद रखो, रोज मुरली सुनने के बाद एक मुरली के पॉइंट नोट करो जो आपको अच्छा लगता है। कि बाबा हर मुरली के अंदर चार विषय है और जो आपको अच्छा लगता है, और उसको लेके नाश्ते तक आप अपने आप से बात करो कि इस पॉइंट को मैं अपने आचरण में कैसे लाऊं, क्या करूं उसके लिए। उसके बाद आपके पास समय है, सारा दिन कर्म करना जरूर है, क्योंकि हम कर्म सन्यासी नहीं है। हर एक को बहुत चिंता है, जिम्मेवारी है, कर्म करना भी है और करो। लेकिन एक बार आपके बुद्धि में ज्ञान बैठ गया ना सवेरे, तो देखना अपने आप स्वभाव संस्कार अपने आप परिवर्तन होगा। क्योंकि ये दवाई है, ये दवाई स्वभाव संस्कार को उछलना नहीं देगा, अपने आप ब्रेक लगेगा। लेकिन इन दोनों को अपने जगह पर बैठना चाहिए, अर्थात बुद्धि के अंदर समझ में आना चाहिए। और एक हफ्ते के बाद देखना, फिर एक दफा सवेरे मुरली सुनी आपने, बस रात को अगर आपको कोई पूछेगा आप तुरंत जवाब दे सकेंगे। हमारे पास अभी भी ऐसी बुद्धि है, लेकिन उसको यूज करना चाहिए। हम करते हैं नेगेटिव बातों के लिए करते हैं। अगर किसी ने एक गलत शब्द बोल दिया, कितने साल तक याद रहेगा, है ना? हाय बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं, बुद्धि है, लेकिन उसका उपयोग दूसरी बात के लिए करते हो। अभी पॉजिटिव में करना चाहिए। अगर इन चार बातों में हमारे जीवन में अगर तीव्रता आती है, अर्थात इस विधि पूर्वक अगर आप करते हो, तो देख सकते दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव संस्कार। हां, सामने वाले परिस्थिति आएंगी, सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, मुझे चेंज होना है, हर एक को समझना है। नहीं तो हमारे अंदर लक्ष्य होता है, सामने वाला तो गुस्सा कर छोड़ ही नहीं रहा है, उनकी बोली के अंदर परिवर्तन ही नहीं है। हां, उनको चेंज नहीं करना है, मुझे करना है। लेकिन हमारे अंदर लक्ष्य होता है सामने वालों को परिवर्तन करना है, पहला है हमारा लक्ष्य होता है उनको परिवर्तन करना है, ये ठीक नहीं है। बाबा ने कहा पहले सामने वालों को परिवर्तन नहीं करना, पहले मुझे करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। लेकिन हमको ये भूल जाता है, हम ये सभी हरेक के अंदर है कि सामने वाला अभी तक चेंज नहीं हो रहा है। हम रोज उसको योगदान देते हैं, रोज उसके लिए सोचते हैं, नहीं वो चेंज नहीं होगा। जब हम चेंज हो जाएंगे, शांत हो जाए, उन्होंने कितना भी बोलने के बाद मैं चुप रहता हूं, तो उनको उनके आवाज उनके कानों में दोबारा गूंजता है। अरे मैंने इतना बोला, उन्होंने एक भी शब्द बोला नहीं है, कुछ भी नहीं किया, उनका आवाज वापस उनके पास ही जाता है और उनको महसूस करके उनको परिवर्तन कराएगा। क्योंकि उनको भी परिवर्तन स्वयं को करना है, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। बाबा की कहता है स्वयं ने क्या, स्वयं को परिवर्तन होना है, है ना? तो इसलिए ये चाहिए कि दूसरा परिवर्तन हो, ये संभव नहीं, स्वयं को परिवर्तन होना है। हो सकता है चार बातें एक योग में बैठने के बाद लक्ष्य, योग में और मुरली में। हमें कभी भी जहां बैठे हो, पहले स्थूल मन बुद्धि एकाग्र हो गया, स्थूल भी एकाग्र होता है, देखा जाता है इधर बैठे हुए इधर देखते हो, उधर देखते हो, टाइम वेस्ट, कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई के अंदर ये डिसिप्लिन है, जिसके लिए हम आए वहां एकाग्र ध्यान उसके ऊपर है। कोई आ रहा जा रहा हमारा क्या मतलब है, हमको क्या करना है, हम जिस लक्ष्य के लिए वहां अटेंशन चाहिए। और उसके बाद जो सुनते हो विधि पूर्वक एक ही शब्द लो, थोड़ा सा ले लो। जैसे खाना बहुत मिलता है, बहुत खा लिया आपने, हजम तो आपको ही करना है, लेकिन आपको जितना चाहे उतना ही ले लो। पहले से को नहीं, इतना नहीं चाहिए, आप मांग के ले लो, ले करके एक दाना भी बाहर फेंकना नहीं चाहिए। अन्न के लिए कितने लोग तरसते हैं, है ना? अगर हम खाना ले करके देने, हम देने वाले ने दिया, हाँ देने वाला देगा, लेकिन आपको कहना चाहिए कि हमको एक ही दे दो, थोड़ा सा दे दो। आप वहां आप निकाल सकते हो, लेके खाना खाने के बाद क्या करेंगे आप? लेकिन लोभ, नहीं हम खा सकेंगे। लोभ होता है खाना चाहिए, बाबा का ब्रह्मा भोजन है, लेकिन दोबारा ले सकते हैं ना। बहुत खाना वेस्ट करते हैं क्योंकि इच्छा होती है खाने की लेकिन जाता नहीं अंदर क्योंकि वातावरण चेंज है ना। खाने पर क्यों ये लोभ होता है। ऐसे यहां भी ज्ञान के अंदर भी बहुत नोट लिखते रहेंगे आप, डायरी भर जाएंगे, यूज कब करेंगे वो डायरी, कब खुलेंगे पर फिर कल सवेरे खुलेंगी। तो ज्ञान सुनने में ज्ञान लिखने में भी लोभ है। हाँ लिखो, समय मिला तो दोबारा पढ़ना उसको, जरूर पढ़ना भी चाहिए है ना। लिखने के बाद वो डायरी खुलती दूसरे दिन तो वो नहीं होता, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। तो वो भी एक लोभ है सुनने का लिखने का है ना, तो वो भी जरूरी है। लेकिन लिखो बहुत, लेकिन उसको दोबारा जरूर पढ़ो। ये चार बातों में तीव्र पुरुषार्थ चाहिए जो बाबा ने अभी भी कहा। सिंपल है बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्रता किस में चाहिए? हमने देखा किसी ने पूछा भाई जी क्या क्या करना, तीव्र पुरुषार्थ माना क्या है? तो बाबा ने 31 दिसंबर के मुरली में सुनाया था, इन चार बातों में तीव्रता चाहिए। ठीक है, ओम शांति।